इसके बाद फरमाया, अल्लाह ऐसे लोगों को हरगिज माफ नहीं करेगा। कौन लोगों को नहीं करेगा? और इन्हें कोई रास्ता सिवाय जहन्नुम के रास्ते के नहीं दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। यानी वो लोग जिन्होंने लोगों की दुनिया को जहन्नुम बनाया, आज कितनी अजियत में दुनिया है। ऐसे मैनमेड लॉस की वजह से पूरी दुनिया जहन्नुम बनी पड़ी है। अल्लाह कहते हैं मैं इनको असली जहन्नुम के अंधेरों में डालूंगा। देखिए अल्लाह का इंसाफ है जहन्नुम, जन्नत अल्लाह का रहम है, अल्लाह का प्यार है, अल्लाह का फजल है। वहां अल्लाह अपने फजल से डालेगा, अपने रहम से डालेगा, लेकिन जहन्नुम में अदल होगा। अल्लाह को अपने एक बंदे पे जुल्म इतना बुरा लगता है, कहां कौमों की कौमें, नस्लों की नस्लें जुल्मो ज्यादती का शिकार हो, तो क्या अल्लाह ऐसे लोगों को छोड़ देगा? अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। अब यहां देखिए कितनी प्यारी दावत दे दी, या अय्युहन्ना सुकज्जा कुमुर रसूल बिल हक मिर रब्बिकुम। लोगों, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आ गया। दिल खुले हक के लिए, हमारे दिल में यकीन बढ़ता जा रहा है कि इस्लामी हक है और अल्लाह का कलाम हक है, तो क्या करो? फामिनू, पस ईमान ले आओ। क्यों? खैर अल्लकुम, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें इसका फायदा होगा। अच्छा, हम नहीं लाते, बड़ा मुश्किल है, इट्स टू हार्ड। तो कब इन तक फुरू इन्नलिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्द। तो याद रखो कि अगर इनकार करोगे तो जान लो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, और अल्लाह तआला अलीम भी है और हकीम भी है। अहले किताब की गुमराहियों में एक बहुत बड़ी वजह उनका गलूफ था। गलूफ क्या होता है? एग्जेजुरेशन, किसी के मुकाम को या बढ़ा देना या घटा देना। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, नसारा ने क्या किया? उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, एग्जेजुरेट कर दिया ना, कि बंदे को खुदा बना दिया। ज्यूस ने हजरत ईसा को नबीउल्लाह बनाने के बजाय नऊज़ुबिल्ला वलदुज़्ज़िना करार दिया, कि वो तो शायद किसी जिना की पैदावार थी, जिसके नतीजे में वो भी भटक गए, ये भी भटक गए। अल्लाह ताला कहते हैं कि पिछली कौमें चूंकि गलूफ से भटकी हैं, ओ मुसलमानों, ओ उम्मते वसत, तुम अपने दीन में गलूफ ना करना। कैसे गलूफ होता है इसको भी देखते हैं, आए देखिएगा। या अहलल किताब इला तगलू फी दीनिकुम, अहले किताब अपने दीन में गलूफ ना करो, अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मनसूब ना करो। मसीह साहिब ने मरियम इसके सिवा और कुछ ना थे कि वो अल्लाह के एक रसूल थे, और एक फरमान था जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा। वो एक रूह थी अल्लाह की तरफ से, जिसने मरियम के रहम में बच्चे की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और ये ना कहो कि तीन है। तीन क्या है? ट्रिनिटी। तीन ना कहो, होली गोस्ट गॉड और वो, और ट्रिनिटी वो ना समझ आने वाली बात है जो क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स को भी समझ नहीं आता। एक मौके पे यूसुफ फेस्टिस है, आपने देखा होगा, उनको सुना होगा, तो उनका एक लेक्चर अटेंड किया था। ये अपने दौर में पहले प्रीस्ट थे, ये खुद बहुत जॉली से भी है, तो इन्होंने खुद सुनाया था कि ट्रिनिटी हम प्रीस को भी कोई नहीं समझ आती। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जैसे एक एग है ना, लेट्स सी कैसे ट्रिनिटी है, लुक सी दिस इज एग, ओके, इसका एक ऊपर छिलका है, फिर उसके अंदर एक वाइट ऑफ है, फिर एक येलो, दिस इज थ्री इन वन एंड वन इन थ्री। यानी वो खुद जोक बना के बता रहे थे कि इनको खुद नहीं पता ये क्या मिस्ट्री है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ट्रिनिटी कुछ भी नहीं है, मत कहो कि तीन है, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, वो पाक है इससे कि कोई इसका बेटा हो। जमीन और आसमान की सारी चीजें उसकी मिल्क हैं, इसी की किफालत और खबर गिरी के लिए वो खुद काफी है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसे गलत अकायद से सबको बचा ले। देखिए जहन्नुम की आग तो सबके लिए तकलीफ की है ना, हमें सिर्फ मुसलमानों का रोग नहीं होना चाहिए, हमें गैरों के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह उन सबको हिदायत दे। मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वो अल्लाह के बंदे हों, ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते इसको अपने लिए आर समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझे, आर क्या है? वो काम करना जिसे शर्म आए। यानी अल्लाह की बंदगी से आर क्या है? सबके बीच में नमाज पढ़ना, उफ मैं सबके सामने नमाज पढ़ूं, अच्छा अब सब बैठे हैं तो मैं नमाज पढ़ू, मैं घर जाके पढ़ूंगी, ये आर है। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह की बंदगी को अपने लिए शर्म का मुकाम समझे और तकबर करता है, तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। इस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है, अपने अथर पूरे के पूरे पाएंगे, और अल्लाह अपने फजल से इनको मजीद अता करेगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकबर किया, इनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं, इनमें से किसी को भी वो वहां ना पाएंगे। क्या समझ आया? हर जगह अल्लाह के बंदे बन के रहो। देखिए कितना प्यारा मैसेज है हम वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स को। अल्लाह कहते हैं नमाज का वक्त आए तुम नमाज पढ़ो, तुम्हें हुक्म दिया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़नी है, तुम्हें हराम से रोके हराम से रुक जाओ, हलाल की दावत है हलाल की दावत ले लो, तुम्हें एक खास हाल हुलिये पे रखा तुम उस पे रो। जब हम अल्लाह के हुक्मों पे अमल करते हैं, अल्लाह को हम पे प्यार आता है, और जब हम कहते नहीं लोग क्या कहेंगे, और आप नोट कीजिएगा बड़े से बड़े गुनाह के रास्ते की रुकावट लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिसने अल्लाह को हर जगह माना उसको इंशाल्लाह दुनिया का कोई कोना भी नुकसान नहीं देगा, और अल्लाह ताला में ऐसे लोगों में कर लेगी। जमीन में चलते फिरते अल्लाह के बंदे बनकर जिए। फिर आगे बड़ी प्यारी दावत है, या युहन्ना सुकद जाकुम बुरहानु मिर रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई, और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। कौन सी रोशनी है ये? सब बोल दें ये कुरान का नूर है। क्या हम कुरान को नूर समझते हैं? क्या इस नूर से हमारे सीने रोशन हो रहे हैं? और आप देखिए जब आपकी जिंदगी में कुरान का नूर आता है ना, तो बस उसके बाद आप सोचिए कि आपको अंधेरे और रोशनी का फर्क पता चलता है। इमेजिन कीजिए कोई कमरा है, डार्क है, बिल्कुल अंधेरा धुत करके, और अल्लाह माफ करे किसी भी नाइट क्लब का मंजर जहन में आ जाता है। हमारा एक जगह स्कूल था जहाँ पहले शहर में, तो स्ट्रिप मॉल था, तो उसके दो तीन शॉप्स छोड़ के नाइट क्लब था, तो कभी उधर से आगे मस्जिद जाते थे हम लोग। तो जब अपने स्कूल से निकल कर हम मस्जिद जाते थे तो कभी कभी वो नाइट क्लब का दरवाजा खुलता है या कोई आ रहा जा रहा है, पूरे बाहर भी उन्होंने अंधेरे पर्दे कर्टन लगाए, तो खौफ आता था वहां से गुजरते। तो कभी कोई एंटर हो रहा है तो खुलता था, यकीन करें अंदर का माहौल देख ऐसे लगता था भूत बंगला, सुर्ख और काला और तेज म्यूजिक और थरकते हुए लोग। तो मेरे जिम्मे हमेशा इन आयतों पर ही आता है, कुरान और इस्लाम के बाहर जिंदगी इतनी अंधेरी होती है। अब एक अंधेरे कमरे में कोई बैठा है, कोई चीज उसके पास है, कहते है बड़ी सॉफ्ट है इसको पकड़ लो, इतने में कोई आकर रोशनी जलाता है बल्ब, अरे ये क्या पकड़ा हुआ है, ये तो सांप था, मैं तो इसको रेशम की रस्सी समझा। ये कुरान ये काम करता है आपके मेरे जिंदगी में। हमने जो सांप और बिच्छू पाले होते हैं ना अपने घरों के अंदर, कुरान खोल के दिखाता है लोगों, ये आग जहन्नम की आग है, ये जहन्नम की रस्सी है। तो रोशनी किसको अच्छी नहीं लगती बताइए, जो सोना चाहता है। जब आपके बच्चे नहीं उठना चाहते और आप लाइट ऑन करते हैं तो वो क्या कहते हैं आगे से, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। तो याद रखिए कुरान की रोशनी और नूरुल कुरान का वही दुश्मन होगा जिसको ये रोशनी अच्छी नहीं लगेगी। वो कहते लोग सोए रहे, रोमांटिक रहो, बैठे रहो, ड्रंक रहो, नशों में पड़े रहो, तो कुरान की रोशनी में आना खुशबख्ती है। पता ही तब चलता है ये जिन चीजों को सीने से आज तक लगाया हुआ ये जहन्नुम के सांप है, फिर वो रोशनी आ जाती है, फिर इंशाल्लाह इलाज भी बड़ा मुमकिन है। लेकिन जिनको नहीं पता, अब आप ये मसले यहाँ सुन रहे हैं, कुरान आपने सुना, सूद की बात से सुनी, आप घर जाके आप अपनी किसी दोस्त को प्लीज फोन पे मत बताइएगा, जब तक खुद वो इस कुरान की आयतों को खुद ना पढ़ ले, कभी ये मसले बाहर जाके ना सुनाए। फर्क वही है कि आपकी जिंदगी में ये कुरान का नूर आया तो आपको ये फर्क लगा, अब उन्होंने तो अभी नहीं चखा, तो वो तो आपकी बातें सुन, अरे छोड़ो टू मच है, कहाँ फंस गई हो, छोड़ो कुरान को, आओ घर बैठ के सपारा सपारा पढ़ते हैं, देखना आधे घंटे में एक सपारा हो जाएगा, ये क्या 2-2.5 घंटे में फंसे रहते हैं। वो लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे क्योंकि अभी उनकी जिंदगी में रोशनी नहीं है। क्या करें, एक दीपक जलाते हैं, एक एक चिराग हम में से हर एक जलाते हैं। हर दिन 30 दिन है तो अपने 30 दोस्तों को टारगेट करके हर दिन उसकी जिंदगी में कुरान का नूर खोल दें, घर चले जाएं, उनके जाके पेलटॉक खोल दें, मिक्सलर खोल दें, जो मीडिया उनको आसान है वो खोल दें, आ सकते हैं तो साथ ले लें, बुला सकते हैं तो बुला लें, किसी भी तरह, और कहीं भी कोई उनको पढ़ाता है तो उधर जाके छोड़ा है, लेकिन इस कुरान की अंधेरों की वजह से। वह देखिए पिछली कौम में ना उनकी किताबें खत्म हो गई, आज बिल्कुल वो है ही नहीं, ये तक नहीं उनको पता कि तौरात किस जुबान में नाजिल हुई थी, आज तो जो उन्होंने हिब्रू ट्रांसलेशन किया ना, उनकी किताबें खत्म हो गई तो उनकी तबाही का जो हाल है आप उसका अंदाजा कीजिए कि आज उम्मत मुस्लिमा किताब महफूज शक्ल में मौजूद है, जेरो जबर नहीं बदला किताब कुरान की सूरत में, हाफिजों की सूरत में करोड़ों हाफिज कुरान दुनिया में मौजूद है, फिर भी उम्मत मुस्लिमा का हाल क्यों खराब है, क्योंकि किताब बंद है। खुली किताब की रिस्पेक्ट करना और बंद किताब की रिस्पेक्ट करना मुश्किल है, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगियों में ये किताब खुल रही है, दुआ करें अब ये खुली ही रहे और यही किताब हमारा नामा अमाल बन जाए। और इक्रा किताब बकफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, कल जब फरिश्ते हमारा नामा अमाल खोलें तो वो कहीं तो सारा कुरान से भरा हुआ, ये तो कुरान के सिवा कुछ बोलते ही नहीं थे, कुरान के सिवा कुछ सुनते ही नहीं थे, और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में कर दे। तो फरमाया कि तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे, पूछिए खुद से 3 सेकंड में, क्या मैं इन लोगों में हूं जो अल्लाह की बात मान लूंगी? अब मुश्किल लगा तो साथ ही अगली बात कर दी, वा तसमू भी, और इसकी पनाह ढूंढ लेंगे कब, जब अमल करना मुश्किल होगा, जब घर का माहौल फर्क है, जब सारी दोस्तें कुछ और कह रही हैं, कुरान कुछ और कह रहा है, शौहर की और राय है, आपकी और है, तो फिर ऐसे वक्त में क्या करें? अल्लाह के दामने रहमत में झुक जाएं। क्या कहें? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की तरफ पनाह ढूंढे, क्या मिलेगा इनको? फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु, इनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजलो करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता इनको दिखाएगा। हाईलाइट करेंगे ये आयत। हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पे अपनी रहमत करे, चाहते हैं फजल करे, चाहते हैं, चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुला ले, तो उसका यही रास्ता है और अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। अब आखिरी आयत है सूरत निसा की, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। ऐ नबी, लोग तुमसे कलाला के बारे में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है, अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और इसकी एक बहन हो तो इस तरके में से निस्फ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मर जाए और इसकी एक बहन हो तो वो इस तरके में निस्फ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई इसका वारिस होगा, अगर मैयत की वारिस दो बहनें हो तो तरके में से दो तिहाई की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हो तो औरतों का अकेहरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अहकाम को वाजह कर देता है ताकि तुम भटकते ना फिरो। इसको हाईलाइट करें, ये है अल्लाह का प्यार आपके और मेरे साथ। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू, अल्लाह नहीं चाहता कि हम भटके। अल्लाह ने ये कुरान एक नेविगेटर की सूरत में हमारे हाथों में दे दिया कि इस पे चलते हुए सिरात मुस्तकीम को ढूंढो, सबीलुल जन्ना पे चलते जाओ और भटकने से बच जाओ, और वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भटकने से बचा दे। भटकने से बचाने का अमली तरीका अल्लाह ने क्या रखा कि हमें सूरत मायदा पे पहुंचा दिया। अगर अभी तक आप रोज आ रहे हैं, कोई भी पारा मिस नहीं कर चुके, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि अल्लाह ने आपके साथ ये फैसला कर लिया कि बस नो मोर, दैट्स इट, जो भटकना था भटक चुके। अब अल्लाह ने वो सिरा हमारे हाथ में कुरान का दे दिया कि जिसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। सूरत मायदा बड़ी अहम सूरत है कुरान पाक की। नबी सल्लम की जिंदगी के आखिरी दिनों में नाजिल हुई थी, इसीलिए इसके बहुत सारे अहकाम जो है वो मनसूख नहीं हुए, नासे। और सूरत मायदा का नाम, जब मायदा टेबल क्लॉथ को कहते हैं जिस पे खाना रखा जाए, असल में इसमें एक दुआ आएगी जो हजरत ईसा के साथियों ने मंगवाई थी कि हमें आसमान से खाना मिले, जैसे कि यहूद को मनो सलवा मिला था। इस सूरत का एक दूसरा नाम सूरत अल-उकूद भी है, अहद व पैमान की सूरत। इसमें सबसे ज्यादा दफा या अय्युल्लज़ीना आमनू का लफ्ज आया, बार बार पुकारा, तकवा की इसके अंदर बहुत बात है, सीरियस सूरत है। रिवायत में यहां तक मिलता है कि अपने मर्दों को सूरत मायदा सिखाओ और औरतों को सूरत नूर सिखाओ।